नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओ, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत।
बहुत बहुत शुक्रिया।
शुरूआत मुख्य समाचारों के साथ। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला वर्षा से बाधित। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मीराबा लुवांग मैसनाम पुरुष सिंगल्स, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स, और तनिषा क्रिस्टो और अश्वनी पोनप्पा महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा की, और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कल भुवनेश्वर में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। शुरुआत आईपीएल क्रिकेट के साथ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होना है। वर्षा के कारण मैच निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है। राकेश, हैदराबाद में हो रहा ये मैच वर्षा से बाधित हो रहा है। हैदराबाद में आज का मौसम की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो कैसा मौसम रहने की संभावना है?
देखिए, बारिश तो तेज नहीं है, बहुत हल्की है, लेकिन ये बड़ा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि आप जो है जो पिच जो आपने बिल्कुल ढक के रखी है
जी,
आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतनी बारिश हो रही है। क्योंकि रूल ये कहता है कि जब वो आप एक बार उसके ऊपर के जो कवर्स हैं वो आप हटा दें, और उसके बाद टॉस और गेम शुरू होने के बीच में कम से कम 15 मिनट आपको और चाहिए। तो क्योंकि अगर मान लीजिए कि 8:30 तक गेम शुरू होता तो हमें पूरे 20-20 ओवर्स पूरे मिल जाते, क्योंकि अब ये गेम 8:30 बजे शुरू नहीं होगा, अब से ओवर घटना शुरू हो जाएंगे।
अच्छा, एक चीज और है
जी,
आज का चूंकि वर्षा से बाधित ये मैच है, उसमें पिच भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, माहौल में नमी आ जाती है। तो आज के मैच में अगर टॉस की भूमिका की हम बात करें तो टॉस कितना इम्पोर्टेंट आपको नजर आता है?
टॉस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर पिच उन्होंने दो बार उसके जो कवर्स थे वो हटाए भी थे, उसके बाद बारिश आई है।
जी जी,
थोड़ी बहुत नमी रहेगी, लेकिन क्योंकि 20 ओवर्स का गेम है और पिच सॉलिड है, ये जो वहां के विकेट है ये बहुत अच्छी विकेट है, और यहां पे मेरे ख्याल से वो इनिशियल जो चेंजेस जो भी होने हैं, मेरे ख्याल से जैसा होगा कि जो टीम पहले जो भी टॉस जीतेगी वो चेज करेगी, टोटल सामने वाली टीम को बोलेगी पहले वो आके बैटिंग करेगी,
बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करेगी
और चेज करेगी, ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा, जीत हार की बात करें और आंकड़ों के आईने में ही बातचीत करें तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है?
SRH का पलड़ा बहुत भारी है, और अगर ये मैच नहीं हो पाता है, किसी कारणवश इसका रिजल्ट नहीं आता है, SRH आज ही जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी।
हैदराबाद की 14 अंक अगर हम
14 हो जाएंगे, 14 से एक उसमें से एक अंक आप और जोड़ दीजिए, 15 टीम्स मतलब जो भी टीम 15 पॉइंट्स पे है, चार टीमों से ज्यादा उनके आगे कोई निकल ही नहीं सकता
अगर वर्षा से बाधित रहा तब।
अगर हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि ये गेम आज हो ही नहीं पाता,
जी जी जी,
अभी तो उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा,
एक अंक बांट दिया जाएगा
और 15 पॉइंट के साथ, क्योंकि अभी SRH का एक गेम और बाकी है, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको इंटरेस्ट से भी क्वालिफाई होने में नहीं है, उनको इंटरेस्ट है कि वो एक या दो में आए, एक नहीं आ पाएंगे तो दूसरे नंबर की जगह है उनको, वहां चाहिए। क्यों चाहिए वो? इसलिए क्योंकि जो एक नंबर और दो नंबर की टीम जो फिनिश करती है उसको फाइनल में पहुंचने का एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है, एक मैच अगर आप जीतते हैं उसके बाद आप पहुंच जाते हैं फाइनल में।
अच्छा, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के इस समय अगर हम देखें तो अंक तालिका तो
बहुत
11 अंक हैं,
बहुत बुरा हाल है,
कहीं कोई प्लेऑफ में खेलने की
कोई चांस नहीं, देयर ऑलरेडी आउट, बाहर हैं वो लोग, ऑलरेडी बाहर।
बिल्कुल, आगे की बात हम करते हैं। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अगर कल की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे होगा। इस मैच के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, मुंबई ऑलरेडी बाहर है और LSG जो है उनको एक चांस है कि मतलब अच्छे मार्जिन से जीतें, और उनका एक बहुत आउटसाइड चांस है, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट इतना बेकार है
जी,
कि एक मैच में वो तय नहीं हो पाएगा उनका। तो बहुत मतलब ये सोचिए कि उनको कल सिर्फ जीतना ही नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, फिर उम्मीद रखनी होगी कि बाकी जो टीम्स हैं वहां पे वैसे रिजल्ट ना आए जैसा वो चाहते हैं।
कल के मैच की बात करते हैं। कल गुवाहाटी में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 18 ओवर और 5 गेंदों में 145 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। राजस्थान के लिए उनकी चौथी हार थी, लेकिन वे 16 अंक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। देखिए, राजस्थान की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन पंजाब किंग्स का क्या?
देखिए, उनकी चौथी नहीं, चौथी लगातार हार थी उनकी। एक्चुअली ये उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि जो टीम इतने टाइम से अंक तालिका पे नंबर वन पे थी उनका बिल्कुल लीग के आखिरी स्टेज पे आके 4 मैच लगातार हारना, और जहां एक समय लोग ये बात कर रहे थे कि ये 1 और 2 की टीम ऑलमोस्ट पक्की है, वहां से गिर के शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो, क्योंकि वो टीम ऑलरेडी क्वालिफाइड है राजस्थान रॉयल्स, हो सकता है कि वो चौथे नंबर पे भी आ जाए। तो क्योंकि ये जो 4 जो लगातार हारे हैं, 5वां भी हार सकते हैं, क्योंकि अब उनका मुकाबला है जो नंबर 1 टीम है। तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 हारने के बाद 5 भी हार सकते हो, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसने इस कदर चोट खाई है अभी कि उन लोग खेल नहीं पा रहे हैं ठीक से। ना उनका जो प्लानिंग है वो दिख रही है, और उनके कुछ खिलाड़ी हैं वो वापस वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के जो थे वो वापस चले गए हैं। तो उनकी टीम में थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत जो है चेंजेस की जरूरत है, उनको वो काबिल लोग मिल नहीं पा रहे हैं उस स्पॉट के लिए। तो ये भी उनको एक दिक्कत हो रही है। और देखिए, जब आप नॉकआउट की तरफ जा रहे हैं, प्लेऑफ की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं होती किसी भी टीम के लिए। चाहे आपने पहले 10 मैच बहुत अच्छे खेले हों, 9 मैच अच्छे खेले हैं, लेकिन उसके बाद आप लगातार 4 मैच हार गए।
अच्छा राकेश, अगर हम पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो पॉइंट टेबल में जो है केकेआर यानी राजस्थान रॉयल्स जो है 13 मुकाबले में 9 जीत और 3 हार के साथ 19 अंकों के साथ टॉप पर है। केकेआर और राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो प्ले ऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। शेष 2 टीमों पर चर्चा हम करते हैं, कौन 2 भाग्यशाली टीमें हो सकती हैं जो प्ले ऑफ में आएगी?
मुझे तो एक SRH तो ऑलमोस्ट पक्का लगता है, ठीक है। और उसके अलावा जो मैच CSK मेरे हिसाब से है, क्योंकि CSK और RCB का लास्ट मैच है, अगर उस मैच में मान लीजिए कि वो मैच CSK जीत जाती है तो CSK थ्रू है। RCB अगर जीतती है तो उन्हें कम से कम 18 रन से जीतना है वो गेम, और उसमें जो मार्जिन है उनको थोड़ा देख के कैलकुलेटेड असॉल्ट होना चाहिए कि अगर पहले उन्होंने बल्लेबाजी की तो कितने रन बना के कितने मार्जिन से जीतना है, और अगर चेस करना है तो कितने में ओवर में वो वाला जो स्कोर है उसके पार पाना है अपने आप को। तो RCB को दोनों तरह से बड़ा कैलकुलेटेड अप्रोच है। CSK को वो मैच सिर्फ और सिर्फ हारना नहीं है, अगर उस मैच में बारिश आ जाती है तो भी CSK थ्रू है, जीत जाती है तो वाकई
सही बात है। 13 मैच हुए हैं,
लेकिन वो इंटरेस्टिंग है वो लास्ट वाला जो फेज है। लेकिन मेरे ख्याल से SRH जो है वो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली क्वालिफाई होगी।
अच्छा राकेश, क्या कुछ उलट फेर की संभावना भी आपको नजर आती है?
उलटफेर किस मैच की बात?
मतलब पॉइंट टेबल में कुछ उलटफेर बड़ा
नहीं,
कुछ उलटफेर हो
सकता है। KKR का ऊपर पहुंचना लगभग तय है। SRH मेरे ख्याल से नंबर 2 टीम होनी चाहिए, और उसके बाद जो तीसरी टीम है वो CSK हो सकती है, अगर जीत जाती है तो CSK थर्ड हो जाएगी, और चौथी टीम होगी राजस्थान रॉयल्स।
दिल्ली का क्या?
दिल्ली का चांस नहीं, क्योंकि दिल्ली अपने सारे मैच खेल चुकी है, उनका नेट रन रेट जितना अच्छा होना चाहिए था शायद वो नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बैडमिंटन पर हम बात करेंगे। बैंकॉक में खेले जा रहे सुपर 500 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के मीराबा लुवांग मैसनाम पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मैसनाम ने डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसेन को सीधे सेटों में 21-14 22-20 से हराया। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने राउंड 16 में चीन की जोड़ी जी हाओ और जेंग वेई हान को 21-16 21-11 से हराया। महिला सिंगल्स में भारत की अश्मिता चालिहा दूसरे दौर में चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त हान यू से एक बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में 15-21 21-12 12-21 से हार गईं। उधर महिला डबल्स में तनिषा क्रिस्टो और अश्विनी पोनप्पा ने ताइवान की जू हंग और यू पेई लिन को 21-19 21-17 से हरा दिया है। इससे पहले करने मुकाबले में ऋतुपर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और के नाकानीशी से 16-21 13-21 से पराजित हो गई। राकेश, थाईलैंड ओपन की बात कर रहे हैं तो आगाज तो अच्छा है, अंजाम के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, जिसमें आपने कहा कि हमारे तीन ऐसे टीम्स हैं और एक इंडिविजुअल है जो कि ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में है, उसमें दो का तो बिल्कुल तय है क्योंकि एक नंबर वन सीड है हमारे जो मेंस डबल्स के जो पेयर हैं सात्विक एंड चिराग,
तो
इनको तो फाइनल जीत के आना है क्योंकि ये बहुत वीक फील्ड है और जो जिनको इन्होंने आज हराया है, चाइनीज पेयर जरूर था लेकिन उनको जीतना ही था बिल्कुल स्ट्रेट। और उसके बाद अगर आप देखें कि तनिषा और अश्विन, वो लोग भी फोर्थ सीड हैं तो उनको भी सेमीफाइनल तक अगर अपने सीडिंग के हिसाब से खेलेंगे तो भी वो सेमीफाइनल में उनको खेलना है,
वहां तक का सफर लगता है।
मिराबा का जो है वो सरप्राइज है,
भविष्य क्या कहता है,
वो क्वालिफायर खेल के आए हैं, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 84 है, उनको इस फील्ड में उनका कोई काम था नहीं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इतना अच्छा खेल रहा है वो लड़का, 21 साल की उम्र है, प्रकाश पादुकोण एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो, और बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि उन्होंने पहले राउंड में HS प्रणॉय को हरा दिया, वो बहुत ही बड़ा रिजल्ट था, और अब एक उन्होंने डेनिश प्लेयर को हराया, दोनों इनसे ऊपर के रैंक प्लेयर हैं, तो बेहतरीन जो एक
अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं, चाहे सिंगल्स
कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांग फील्ड नहीं है और इंडियंस को अच्छा करना चाहिए।
मुझे लगता है डबल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, सिंगल्स में अच्छी उम्मीद हम रख सकते हैं और महिला डबल्स में भी हम उम्मीद रख सकते हैं। और अब बात स्क्वैश की, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने स्क्वैश खिलाड़ियों अनाहत सिंह, अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया है। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए इन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना में शामिल किया गया है। पिछले कई वर्षों से सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा ने भारत का नाम इस खेल में आगे रखा। अब अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों अनाहत सिंह, अभय सिंह और वेलाथन सेंथिल कुमार को इसकी कमान सौंप रहे हैं। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव साइरस पुंचा ने कहा कि टॉप्स कार्यक्रम में स्क्वैश को शामिल करना भारत में इस खेल के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। और अब बात फुटबॉल की, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री छेत्री ने बताया कि इस वर्ष 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ उनके करियर का अंतिम मैच होगा। सुनील छेत्री ने भारत के लिए साल 2005 में सीनियर टीम में डेब्यू किया था। बाइचिंग भूटिया के बाद उन्होंने टीम की कमान संभाली थी। सुनील छेत्री ने अपने करियर में भारत के लिए 150 मैचों में 94 गोल किए हैं। सुनील छेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री को वर्ष 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जिससे पहले उन्हें 2019 में पद्मश्री और 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। इसके अलावा छेत्री ने अपने शानदार करियर में 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। राकेश, सुनील छेत्री के संन्यास के साथ एक युग का समापन हो रहा है।
बिल्कुल, देखिए 19 साल से खेल रहे हैं लगातार, और 19 साल में अगर आप देखें 6 साल वो थे जब वो और भाईचंद भूटिया साथ खेले
जी,
और 2011 से लेकर अब तक वो ऑलमोस्ट एक ही स्टार हैं इंडियन फुटबॉल के, तो मान के चलिए 13 साल अकेले रहे हैं वो टॉप स्टार, और हर मैच में ये उम्मीद की जाती है कि भाई बाकी लोग चाहे कुछ करें ना करें, सुनील छेत्री कुछ न कुछ जरूर करेंगे और उन्होंने ज्यादातर किया है।
बहुत संक्षिप्त में, सुनील छेत्री के बाद भारतीय फुटबॉल जगत में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो विश्व पटल पर चमकने की संभावना?
मुझे नहीं दिखता है, मैं 40 साल से इंडियन फुटबॉल देख रहा हूं लेकिन मुझे 11 अच्छे खिलाड़ी नहीं दिखे 40 साल।
अच्छा, बड़ी उपलब्धि है सुनील, विश्व में गोल करने के मामले में तीसरे नंबर पर रहे हैं, विश्व के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनके बाद, मैसी के बाद और रोनाल्डो के बाद तीसरे स्थान पर हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकती है।
यस, आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ फुटबॉल भी देख लें
जी, जी।
तो हम इस बात को शायद यहीं खत्म कर देंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जरूर कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताती हैं, मगर स्टैटिस्टिक्स वो भी है जो बाकी काफी चीजें नहीं बताती हैं।
और बात हम करेंगे भाला फेंक की, भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कल खेली गई स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को शुरू में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि 3 राउंड के बाद भी वे दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने चौथे राउंड में 82.27 मीटर दूरी पर भाला फेंका और प्रतियोगिता में बढ़त बनाई। समय अनुमति नहीं दे रहा है राकेश, तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।